नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से हुआ खारिज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान अररिया के फारबिसगंज में नए हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा। राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई हुई तेज। सासाराम से जमाखोरी के आरोप में दो लोग लिए गए हिरासत में। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज समेत 8 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया है। श्री बिरला पर सदन की कार्यवाही के दौरान भेदभाव करने का आरोप था। इस प्रस्ताव पर सदन में 10 घंटे लंबी चर्चा चली। विपक्ष के हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने की घोषणा की।
प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ।
इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सदन आपसी विश्वास और तय नियमों के अनुसार चलता है। उन्होंने कहा कि 4 दशक बाद फिर से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, जो संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए अफसोसजनक घटना है।
सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं। जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं, उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी हो, इसको अधिकार नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब सदस्य आसन की निष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं तो इसकी निंदा होनी चाहिए।
स्पीकर जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हुआ। मगर विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। इसकी घोर निंदा हम इस सदन में खड़ा रह सकते हैं।
इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने पर बार बार टोका जाता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं।
भारत सरकार ने साफ साफ गाइडलाइन भी जारी किया है, 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है, और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करें।
इस बीच पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को रसोई गैस और पेट्रोल के जमाखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।
ये समस्या है और इसको राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है।
इधर राज्य में एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जगह जगह पुलिस अभिरक्षा में सिलेंडर का वितरण करवाया जा रहा है। इस बीच सासाराम नगर थाना क्षेत्र के जक्की शहीद वार्ड संख्या 19 स्थित एक किराना दुकान में प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज अररिया में समृद्धि यात्रा के दौरान जनसंवाद को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 50 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
रोजगार के लिए जिले में 5,35,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अररिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे और इन कामों से जिले का पूरे तौर पर पूरे देश में विकास होगा। और केंद्र सरकार का भी बहुत सारा मदद मिल रहा है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा।
किशनगंज में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए। उन्होंने कहा कि जल्द ही 45,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बीपीएससी का कर रहे हैं, तो 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन के साथ विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही राज्य सरकार काम करेगी। उप मुख्यमंत्री ने अररिया के फारबिसगंज में नए हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की।
हम लोगों ने तय किया कि यहाँ के भी फारबिसगंज में जो लगभग 150 एकड़ जमीन है वहां पर भी एक एयरपोर्ट बनाने का काम हम लोगों की सरकार करेगा सर। इसलिए साथियों, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास और बिहार की समृद्धि, यही सबसे महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया जिले में 546 करोड़ रुपए लागत वाली 68 और किशनगंज में 235 करोड़ रुपए लागत से 122 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दोनों जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना पर जा सकते हैं। सुपौल के वीरपुर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए 36 करोड़ 38 लाख रुपए की निविदा प्रकाशित की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत आधुनिक टर्मिनल भवन, ATC टावर और फायर स्टेशन समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 32 वर्षीय एक व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। न्यायालय ने पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में पड़े व्यक्ति के कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र को हटाने की अनुमति दे दी है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन रक्षक यंत्र या उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक उपचार को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों से एक बार फिर काम पर वापस लौटने की अपील की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि काम करने वाले कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मैं तो फिर से आग्रह कर रहे हैं कि जनता के हित में काम करें और काम करने वाले लोगों का सम्मान और उनका समाधान हम निश्चित तौर पर करेंगे।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान श्री यादव ने राजद उम्मीदवार के लिए AIMIM से समर्थन मांगा है। कल भी पटना में महागठबंधन के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली विजेता टीम के 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहायक कर्मचारियों के बीच बांटा जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आज पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया गया। आरपीओ पटना परिसर में आयोजित इस अदालत में 6 महीने से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा किया गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया कि अदालत में 90 आवेदन आए, जिनमें से 50 का निष्पादन कर दिया गया। शेष मामलों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा। भागलपुर के खोखा गंगा घाट पर नदी में डूब रही एक महिला को बचाने के क्रम में 3 युवकों की मौत हो गई। हालांकि महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। तीनों युवक महिला के भतीजे थे। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना में तैनात डायल 112 के पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश राम को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक का एक शराब कारोबारी से शराब मांगने का वीडियो वायरल होने पर ये कार्रवाई की गई है। जमुई जिले के सिकंदर चौक से एसटीएफ और खगड़िया पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध चौथम थाना में कई मामले दर्ज हैं। रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के बड़ियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ई रिक्शा से भारी मात्रा में शराब बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। शेखपुरा जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में आयोजित एक दिवसीय रोजगार मेले में 102 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से हुआ खारिज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान अररिया के फारबिसगंज में नए हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा। राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई हुई तेज। सासाराम से जमाखोरी के आरोप में 2 लोग लिए गए हिरासत में। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज समेत 8 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।